अर्जुन गुस्से में एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था और अमरजीत जी भावहीन से उसे देख रहे थे। अर्जुन ठीक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। जवाब दीजिए, क्यों किया आपने ऐसा? क्या जरूरत थी आरवी को यहाँ लाने की? अमरजीत जी उसके हर सवाल पर खामोश रहे, पर अब वो चुप न रह सके और दर्द से तड़पते हुए बोले, तो और क्या करते हम? ये जानते हुए कि शान हमारी दुश्मनी की आग में हमारी मासूम बेटी को जलाने वाला है, उन्हें वहीं छोड़ देते, बर्बाद होने देते अपनी बेटी की जिंदगी, अपनी बेटी को उनके गुस्से और नफरत की बलि चढ़ने देते, उन्हें उस जगह छोड़ देते जहां उन्हें सिवाय दर्द और जिल्लत के और कुछ नहीं मिलेगा। देखते रहते उन्हें दर्द से तड़पते खामोश। नहीं कर सकते थे हम ऐसा, बाप हैं हम उनके, नहीं रह सकते हम खामोश, नहीं देख सकते उन्हें दर्द में, नहीं बनने दे सकते हम उन्हें शान के गुस्से और नफरत का शिकार। अच्छा, तो आप उसे दर्द से बचाना चाहते थे, और उसकी ज़िंदगी में ये दर्द तो आपकी ही वजह से है। आज अगर शान उसे टॉर्चर कर रहा है तो उसके पीछे आपके गुनाह है। आपके लिए उसके दिल में जो नफ़रत और गुस्सा भरा पड़ा है वही तो वो आपकी बेटी पर निकाल रहा है। आज अगर मेरी बहन दुखी है तो उसकी वजह आप हैं। आज अगर मैं अपनी बहन के आंसू तक नहीं पहुँच सकता तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उसके हर दर्द और तकलीफ़ के लिए आप कसूरवार हैं। जो भी मेरे या उसके साथ हो रहा है वो सब आपके वजह से हो रहा है। आरवी आपकी बेटी है, इसी बात की तो सज़ा भुगत रही है वो, और आप ही उसे बचाने की बात कर रहे हैं। अर्जुन की बात सुनकर अमरजीत जी स्तब्ध से रह गए। उन्होंने अविश्वास भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, आप कहना चाहते हैं कि हम गुनाहगार हैं आपके और उनके? आपको भी लगता है कि शान जो इल्ज़ाम हम पर लगा रहा है वो सब सच है? आप भी हमें दोषी समझते हैं? आपको भी शान पर भरोसा है पर अपने डैड पर नहीं है? आप बताइए कि किस पर विश्वास करूँ मैं? जो दर्द शान की आंखों में दिखता है उस पर यकीन करूँ या आपकी बातों पर विश्वास करूँ? आपके लिए उसकी नफ़रत बेवजह नहीं हो सकती डैड, क्योंकि उस नफ़रत के पीछे छुपा दर्द और तकलीफ़ देखी है मैंने। अगर आप सच्चे हैं तो क्यों करता है वो आपसे इतनी नफ़रत? अगर आपने कुछ नहीं किया तो माँ क्यों हमें छोड़कर चली गई थीं? अगर शान जो कह रहा था वो सब झूठ था तो आप बताइए ना कि आखिर सच क्या है? क्यों अचानक माँ घर छोड़कर चली गईं? क्यों उन्होंने आदिया को यहाँ नहीं रहने दिया? क्यों वो कभी लौटकर नहीं आईं? क्यों अंकल और आपकी दोस्ती टूट गई? कहाँ है आंटी? क्यों करता है शान आपसे इतनी नफ़रत? जवाब दीजिए मुझे डैड। सालों पहले ऐसा क्या हुआ था कि दोनों परिवार बिखर गए, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? अगर आपने कुछ नहीं किया तो जो शान ने कहा वो सब किसने किया? अगर वो झूठ कह रहा है तो आप सच्चाई साबित कीजिए, साबित कीजिए कि आपने कुछ नहीं किया है। और अगर आप ऐसा साबित नहीं कर सकते तो मैं अपनी बहन की आंखों में आए हर आंसू का जिम्मेदार आपको ही मानूंगा। अर्जुन की बात सुनकर अमरजीत जी खामोश रह गए। कहते भी क्या, उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत था ही नहीं। उनको खामोश देखकर अर्जुन के चेहरे पर दर्द की लहर सी दौड़ गई। उसने कदम वापस पीछे हटाते हुए कहा, खामोश हैं आप, पर आपकी खामोशी ने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, पर इतना याद रखिएगा कि अगर आपकी किसी हरकत की वजह से मेरी बहन पर कोई मुसीबत आई या उसकी तकलीफ में इजाफा हुआ तो उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा। अर्जुन ने अपनी बात पूरी की और पलटकर वहां से चला गया। अमरजीत जी धम से सोफे पर बैठ गए। आज उनके दोनों बच्चों ने उन्हें दोषी ठहरा दिया था। आज उन्होंने अपने दोनों बच्चों की नज़रों में अपना सम्मान खो दिया था और उनके दोनों बच्चे आज उनसे दूर जा चुके थे। कुछ देर तक तो निराश से सर झुकाए बैठे रहे, फिर उन्होंने खुद को संभाला और किसी को फ़ोन लगाते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके जाते ही ऊपर कॉरिडोर में खड़ी निया, जो रेलिंग पकड़े खड़ी तब से सब कुछ देख रही थी, वो भी अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ आरवी शान के बगल वाली सीट पर एकदम खामोश बैठी हुई थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और आंखों की नमी अब सूख चुकी थी। वो सूनी निगाहों से खिड़की के बाहर देखे जा रही थी। उसके बगल में ड्राइविंग सीट पर बैठे शान के चेहरे पर अब भी गुस्से के भाव मौजूद थे। कार हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद एक तेज झटके के साथ कार मल्होत्रा मेंशन की पार्किंग में रुकी। झटका लगने की वजह से आरवी आगे की तरफ झुक गई, लेकिन शान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और कार से बाहर निकलते हुए बोली, 5 मिनट के अंदर रूम में पहुंचो। इतना कहकर वो बाहर निकल गया और डोल इतनी जोर से बंद किया कि उसकी आवाज से आरवी कांप सी गई। उसकी सूनी निगाहों से जाते हुए शान को देखा, फिर कार से बाहर निकल गई। अंदर हॉल में ही अर्पिता जी और सुभाष जी मौजूद थे। शान पूरे 1.5 दिन बाद घर आया था, पर शायद उससे सुभाष जी और अर्पिता जी की नाराजगी अब तक कम नहीं हुई थी। दोनों ने ही उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज कर दिया। शान ने भी उनकी तरफ निगाहें नहीं उठाईं और तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के कुछ देर बाद आरवी ने हॉल में कदम रखा। उसे देखते ही अर्पिता जी ने परेशान लहजे में सवाल किया, आरवी बेटा, आज आपको आने में देर कैसे हो गई और आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? सब ठीक है ना बेटा? उनको इतना परेशान होते देख आरवी ने फीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए कहा, जी बड़ी माँ, वो आज अकेडमी में ही थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए आने में लेट हो गया। यहाँ आरवी ने अपनी बात खत्म की। इसके साथ ही सुभाष जी ने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, आरवी बेटा, आप शान के साथ घर आई है? आरवी ने तुरंत ही हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी डैड, वो आज ड्राइवर अंकल को काम से जाना पड़ा तो ये आए थे लेने। आरवी ने एक बार फिर झूठ कह दिया, पर शायद सुभाष जी की अनुभवी आंखों ने उसके झूठ को पकड़ लिया था। उन्होंने परेशान निगाहों से उसे देखते हुए फिर से सवाल किया, शान ने फिर आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना बेटा?
नहीं डैड, वो सच में बस मुझे लेने ही आए थे, आरवी ने तुरंत ही इनकार में सर हिला दिया।
अच्छा बेटा, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, कुछ देर आराम कर लो, अंशु आ जाएगी तो आपको वक्त नहीं मिलेगा।
अर्पिता जी की बात सुनकर आरवी ने सर हिला दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो रूम में पहुंची तो शान ने पहले उसे घूरा, फिर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसके दरवाजा बंद करने पर एक पल को आरवी घबरा गई, पर उसने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए अपनी घबराहट को छुपा लिया और भावहीन सी यूं ही खड़ी रही। दरवाजा बंद करने के बाद शान उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया, पर आरवी ने निगाहें उठाकर उसे देखा तक नहीं।
शान ने उसका भावहीन चेहरा देखा तो गुस्से में उसकी बांह पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया।
आरवी की निगाहें अब उसके चेहरे की तरफ उठ गई, पर चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे।
क्यों गई थी तुम वहां? बहुत मन कर रहा था अपने उस बाप से मिलने का।
शान का सवाल सुनकर आरवी कुछ हैरान सी गई और कुछ जवाब न दे सकी। उसकी खामोशी शान के गुस्से को बढ़ा गई। उसने उसकी बांह पर अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से में जबड़े भींचते हुए अपना सवाल दोहराया।
कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो, क्यों गई थी वहां?
जरूर पढ़े मेरी स्टोरी, हिज डेंजरस ऑब्सेशन, एक ऐसी मोहब्बत जो हदें पार कर गई। जब आरोही की आंखें खुली, वो एक ऐसे बंद दरवाजे के पीछे थी जहां उसकी मर्जी की कोई जगह नहीं थी। धुंधली यादों, भारी सिर और डर से भरे दिल के साथ उसने जो पहला नाम सुना वो था अधिराज। वो रात जो एक बुरे सपने जैसी लग रही थी, अब उसकी हकीकत बन चुकी थी। वो कमरा जो अजनबी था, अब उसकी कैदगाह बन चुका था। और वो शख्स जिसकी आंखों में दीवानगी थी, अब उसका सब कुछ बन बैठा था। अब तुम सिर्फ मेरी हो।
उसके ये शब्द आरोही के रूह तक उतर गए। वो भागना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये उसकी खतरनाक दीवानगी थी।